नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। सार्वजनिक क्षेत्र की भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने बांग्लादेश में बिजली ग्रिड के साथ 1320 मेगावाट की मैत्री अत्याधुनिक ताप बिजली परियोजना की 660 मेगावाट इकाई 2 को भी जोड़ दिया है। भेल ने बुधवार को बयान में ये जानकारी दी। ताप बिजली संयंत्र को जोड़ने का मतलब निर्धारित मापदंडों पर मुख्य ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की शुरुआत करना है। भेल ने बयान में कहा कि इस इकाई की शुरुआत दोनों देशों की सरकारों के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में जताई गई प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। निर्धारित समय में इस लक्ष्य को पूरा करना काफी कठिन था। मैत्री एसटीपीपी बांग्लादेश के बगेरहाट जिला में मोंगला के रामपाल में स्थित है और इसे बांग्लादेश भारत मैत्री बिजली कंपनी के लिए भेल स्थापित कर रही है। ये बांग्लादेश बिजली विकास बोर्ड और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच आधी आधी हिस्सेदारी का संयुक्त उपक्रम है। SAR समूह की इलेक्ट्रिक वाहन इकाई इलेक्ट्रिक्स ईवी की नई उत्पाद पेश करने और देश में अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए अगले साल 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कंपनी ने बुधवार को अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर LXL को पेश करते हुए कहा कि पिछले 3 साल में वह अपने परिचालन पर 300 करोड़ रुपए का निवेश पहले ही कर चुकी है। इलेक्ट्रिक्स ईवी के प्रबंध निदेशक एवं CEO विजय कुमार ने पीटीआई भाषा से कहा कि कंपनी को अपने कारोबार का विस्तार करने और नए उत्पादों की पेशकश के लिए करीब 500 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। उन्होंने कहा, हम अपनी भावी वृद्धि के वित्त पोषण के लिए अगले साल ये राशि जुटाने के बारे में सोचेंगे। कतर का सॉवरेन संपदा कोष मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की खुदरा इकाई में करीब 1% हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। उद्योग सूत्रों ने बुधवार को ये जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि कतर निवेश प्राधिकरण द्वारा रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में 1% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर $1 अरब या 8,199 करोड़ रुपए में किया जाएगा। इस लिहाज से RRVL का मूल्यांकन करीब $100 अरब बैठेगा। RRVL रिलायंस इंडस्ट्रीज के खुदरा साम्राज्य की होल्डिंग कंपनी है। इस कदम से RRVL को अपने विस्तार को और तेज करने में मदद मिलेगी। इस बारे में संपर्क करने पर रिलायंस रिटेल के प्रवक्ता ने पीटीआई भाषा से कहा, कंपनी निरंतर आधार पर विभिन्न अवसरों का मूल्यांकन करती है। हमारा सिद्धांत है कि हम बाजार में चल रही अटकलों पर टिप्पणी नहीं करते हैं। घरेलू बाजार में ऊंचे खुदरा मूल्य और विदेशी बाजारों में कच्चे तेल के दाम कमोबेश निचले स्तर पर रहने से पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को चालू वित्त वर्ष में कम से कम 1,00,000 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ हासिल होने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। चालू वित्त वर्ष में अब तक कच्चे तेल की कीमत 1 साल पहले की तुलना में 30% से अधिक नीचे आ चुकी है। वहीं पेट्रोलियम कंपनियों ने इस दौरान दाम नहीं घटाए। तेल कीमतों में मई 2022 से कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्रिसिल ने बुधवार को जारी एक नोट में कहा कि चालू वित्त वर्ष में पेट्रोलियम विपणन कंपनियां 1,00,000 करोड़ रुपए का परिचालन लाभ कमा सकती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक का एकल शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून की पहली तिमाही में 4 गुना होकर 1,255 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। डूबे कर्ज में कमी तथा ब्याज आय बढ़ने से बैंक का मुनाफा बढ़ा है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक ने 308 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में PNB ने कहा कि पहली तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 28,589 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में ये 21,294 करोड़ रुपए थी। इस दौरान बैंक की ब्याज आय भी बढ़कर 25,145 करोड़ रुपए रही, जो 1 साल पहले की समान अवधि में 18,757 करोड़ रुपए थी। GSK फार्मास्यूटिकल्स का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली जून में समाप्त तिमाही में 11% की वृद्धि के साथ 132 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी ने बुधवार को ये जानकारी दी। दवा निर्माता कंपनी ने बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 119 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। GlaxoSmithKline फार्मा ने शेयर बाजार को बताया कि पहली तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 798 करोड़ रुपए हो गई, जो बीते वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 773 करोड़ रुपए थी। कंपनी के प्रबंध निदेशक भूषण अशिकर ने कहा, विकट विपरीत परिस्थितियों के बावजूद GSK के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कार्य करती रही। हम वृद्धि के नए अवसर तलाशने और प्रमुख क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंच का परिचालन करने वाली मेटा के वैश्विक मामलों के अध्यक्ष निक क्लेग ने बुधवार को कहा कि भारत में वृहद आधार पर प्रौद्योगिकी आधारित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा जनहित पर केंद्रित है और ये दूसरों के लिए एक शानदार मॉडल है। क्लेग ने कहा कि किस प्रकार मेटा और उसके संदेश मंच व्हाट्सएप ने स्वास्थ्य तथा भुगतान सहित भारत की डिजिटल सार्वजनिक पहल को आत्मसात किया तथा उसे आगे बढ़ाने में मदद की। उन्होंने कहा, हम इस समय ONDC के साथ काम कर रहे हैं ताकि ये देखा जा सके कि हम और क्या कर सकते हैं। क्लेग के अनुसार, जब डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की बात आती है तो भारत में जिस स्तर पर यह हुआ है और सार्वजनिक हित के जिस दर्शन पर आधारित है वह अपने आप में अनूठा है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।